मान से शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। आज का विषय कठिन अवश्य है, लेकिन अपन कोशिश करेंगे कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं थोड़ा बहुत सब उसमें से समझ के जाएं। पांच भाव आत्मा के असाधारण पांच भाव के विषय है। नाम भी नहीं सुने होंगे आपने कभी। महाशास्त्र जो तत्वार्थ सूत्र है जिसकी चर्चा कल अपन ने की थी, प्रमाण नहीं रधिगमा, पहले अध्याय का छठवां सूत्र, ये दूसरे अध्याय का पहला सूत्र है। तत्वार्थ सूत्र पढ़ा रहे हैं पंचोली जी, और कोई दूसरी बात नहीं है। तो सब समाज को मान्य है, सब संप्रदायों को मान्य है। उसमें कहा कि आत्मा में पांच भाव ऐसे हैं जो उसके असाधारण हैं। असाधारण माने बहुत बढ़िया, ऐसा अर्थ नहीं है, घबराना नहीं। और साधारण माने ऐसे ही तुच्छ, ऐसा भी अर्थ नहीं है। असाधारण माने जीवों के अलावा और पदार्थों में ना पाए जाएं, पुद्गल में ना हो, आकाश में ना हो, ऐसे भाव उनका नाम असाधारण भाव। और कुछ ऐसे भाव भी होते हैं जो जीव में भी और पुद्गल में भी है, तो उनको बोलते हैं साधारण। जो सब में हो उसका नाम साधारण, और जो अकेले अपने में हो उसका नाम असाधारण। वास्तव में इन्हें साधारण भी कह सकते हैं, क्यों, ये सब जीवों में है ना, इसलिए साधारण। और अपना ज्ञान अकेले अपने में है ना, तो वो अपने लिए असाधारण। तो ये साधारण भी है और असाधारण भी है। क्या है ये पांच प्रकार के भाव? औपशमिक, छायक, छायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। नाम भी नहीं सुने कभी, कोई चिंता की बात नहीं है। अपने कर्म होते हैं ना, कर्म, कर्मों की बात तो सुनी होगी कि आज कर्म होते हैं अपने जैनियों में। तो उस कर्म के उपशम, उपशम माने वे दब जाए कर्म, उससे जो भाव होते हैं उसका नाम है औपशमिक भाव। अभी जो पानी था ना कुएं में, बहुत निर्मल, और उसमें ऊपर कौआ बैठा था वृक्ष के ऊपर, क्यों, तो वो तो कौआ ऊपर बैठा है, उसमें तो कोई मलिनता नहीं है। लेकिन जो मछलियां अथवा मैल उस पानी में अंदर पड़ा है, वो तो उसके अंदर है, मतलब जिंदगी, वो भी सही है, उसकी बात भी आएगी। लेकिन उस पानी के अंदर मछलियां हैं और भी कई तरह के मैल पड़े हुए हैं, इनका छान कर पीने की क्या जरूरत थी? कौआ को थोड़ी छानते हैं अपन, क्यों? तो कहते हैं आत्मा में कर्म के उदयादिक से जो चीजें विद्यमान हैं, जब वे थोड़ी दब जाएं तो उसे बोलते हैं उपशम। दब जाए का मतलब क्या, कि पानी में हलचल बंद हो जाए तो मैल नीचे बैठ जाता है। शांत हो पानी तो मैल नीचे बैठ जाता है, तो उसे बोलते हैं उपशम। और वो पानी को धीरे से ऊपर से निकाल दो, मैल अलग रह जाए और पानी निर्मल अलग हो जाए, उसे बोलते हैं क्षय। अब कितना ही हिलाओ तो पानी मैला नहीं होगा, और पहली दफे में जरा हिलाओ तो वो निर्मल पानी मैला हो जाएगा, है ना? शास्त्रों में ऐसा उदाहरण आता है कि मान लीजिए कि बर्तन में पानी है और उसमें हमने फिटकरी डाली। शास्त्रों में शब्द कतक फल, कतक फल का मतलब है ऐसा पदार्थ कि उस पानी में डालने से पानी का मैल नीचे बैठ जाता है और ऊपर पानी निर्मल हो जाता है ना? तो उस पानी की तीन दशाएं हो गई। एक तो वो मैली कि जिसमें वो पानी खूब मैल मिला हुआ था, एक वो पानी मैल नीचे बैठ गया है और ऊपर पानी है, और तीसरी वो कि मैल को निकाल दिया है और पानी अलग कर दिया है वो निर्मल। तो तीन तरह की दशा हो गई ना, जिसमें मैल मिला हुआ है गंदा पानी जिसे अपन कहते हैं, उसमें आप अपनी शक्ल देखो तो दिखाई नहीं देगी, चल में ना, उस गंदे पानी को बोलते हैं औदिक भाव। आत्मा में कर्म के उदय से ऐसा मेल मिक्सचर हो जाए मोह राग देश का, तो उसे बोलते हैं औदिक भाव। ये क्रोध मान माया लोग औदिक भाव हैं, तो हमें गुस्सा आता है यदि होता है, तो कहते ये भी आत्मा में ही होते हैं और आत्मा के असाधारण भाव हैं और आत्मा के स्वतत्व हैं, ऐसा लिखा है तत्वासूत्र में। क्या मतलब, ये कोई बाहर से नहीं आए हैं, ये आकाश में नहीं चपके हैं, आकाश में तो राग द्वेष है ही नहीं, लेकिन ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। बहुत सा मेल तो ऐसा होता है कि जो बाहर से मिलाया जाता है, और बहुत सा मेल ऐसा होता है कि जन्म से ही उसके साथ जुड़ा होता है। जैसे सोना है ना, तो कोई शुद्ध सोना थोड़ी खदान में से निकलता है, अशुद्ध निकलता है, फिर स्वतंत्र का उसे बनाया जाता है कि नहीं। ऐसे ही अनादि से इस आत्मा को मिथ्यात्म राग देश के भाव हैं। तो एक कह रहे भैया भी उसके ही हैं, क्यों कि तुम ये नहीं मानोगे कि हमारे हैं ही नहीं, हम में हैं ही नहीं, तो उनके नाश का उपाय कैसे करोगे। और यदि ये मानोगे कि ये हमारे हैं तो उनका नाश क्यों करोगे। समझे, दो बातें होंगी। बाजार से आप केला लाते हैं ना छिलके शहर, तो छिलका केला है कि नहीं है, क्यों छिलका, क्योंकि आज तक किसी खेत में ऐसा केला पैदा नहीं हुआ जिसमें छिलका नहीं हो। यदि होता तो हम वो ही लाते, फिर छिलके वाला नहीं लाते। वो जन्म से उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि छिलका खाना, और उसे निकाला जा सकता है। यदि केला खाना है तो छिलके सहित केला आएगा, उसमें तुम ये समझना कि छिलका जुदा है और केला जुदा है। अंदर जब खोलोगे तो मालूम पड़ जाएगा बिल्कुल जुदा जुदा है, तुम्हें निकालने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्यों, और छिलका फेंक देना और केला खा लेना। तो आत्मा में राग देश अनादि से हैं, लेकिन आत्मा से वे जुदे हैं, हैं आत्मा में, अनादि से हैं, आत्मा में ही पैदा हुए हैं, कर्म का उदय उनमें निमित्त है, उन्हें बोलते हैं औदिक भाव। तो उन औदिक भावों को निकाल देना, उनसे भिन्न आत्मा को जानना, ख्याल में है ना, इसका नाम है उपसंभाव। उपसंभाव माने क्या, हमने ये अभी छिलके के ऊपर केला है, केले के ऊपर छिलका है, लेकिन आपके ज्ञान में आ गया ना कि छिलका अलग और केला अलग, तो आधा काम हो गया। ऐसा लिखा है शास्त्र में कि पानी देखा कि बहुत गंदा है, टोडरमल जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया इसके लिए। अब बहुत जोर की प्यास लग रही है और पानी दूसरा कोई है नहीं, बोलो पंचोली जी क्या करें। तो उन्होंने उदाहरण दिया, कोई गंदा पानी समझकर उसका सर्वथा त्याग कर देगा तो प्यास से मर जाएगा, क्यों, और कोई आदमी के भाई पानी अब जैसा है वैसा है पीना तो है ही, गंदा पी लेगा तो भी इन्फेक्शन हो जाएगा, दो चार दिन बाद मरेगा, है ना। तो क्या करें कि पानी मेले पानी में मेल जुदा है और पानी जुदा है। पहले ऐसा जाने कि पानी मेला होता ही नहीं, मेल और पानी, मेल प्लस पानी, ये पोजीशन है, और इस मेल को इस पानी में से निकाला जा सकता है। ये कब से है, झगड़े में पड़ने से क्या फायदा, हमें क्या लेना देना है कि वो कब से है और कब से नहीं है। सवाल ये है कि हमें पानी पीना है और शुद्ध पानी पीना है, बोलो क्यों। तो उस पानी को शुद्ध किया जा सकता है, मेल को अलग किया जा सकता है। पानी कहो जी मेल को अलग कर दो तो अंदर शुद्ध ही है। देखो जो बाजार से अपन सोने लाए ना, सोना समझ लीजिए जिसमें आधी खोट मिली है 14 कैरेट का है, तो 14 कैरेट के सोने में भी 24 कैरेट का सोना है कि नहीं है, बोलो आप जानते हैं नहीं जानते हैं। और निकाला जा सकता है उसे, ऐसे ही उस पानी में, मेले पानी में, मेला पानी माने अधिक भाव वाला पानी, राग द्वेष वाला आत्मा, और राग द्वेष को निकाला जा सकता है और पानी को निर्मल किया जा सकता है। ऐसे ही आत्मा में राग द्वेष हैं, लेकिन वे निकाले जा सकते हैं और आत्मा को निर्मल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि पानी अलग है और मेल अलग है, आत्मा अलग है और राग द्वेष अलग है। इसके लिए 5 भाव समझने पड़ते हैं। तो वो ये कहते हैं कि हमने वो पानी को साफ करने की प्रक्रिया अपनाई, जैसे मैंने कहा फिटकरी डाल दो, शास्त्र में देखा कटक फल डाल दो, और आजकल तो विज्ञान का जमाना है तो पानी के प्योरिफिकेशन करने के लिए बहुत बहुत रास्ते निकल गए हैं। उस पदार्थ को हमने डाला तो मेल अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। अरे दूध में भी है ना, दही में भी है ना, पानी है कि नहीं है, और उसमें कोई ऐसी चीज डाल दो कि फट जाए तो पानी अलग हो जाता है और वो अलग हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अब वो जब तक हमने देख लिया कि ये अलग हो गया ये अलग हो गया, लेकिन एक ही बर्तन में दोनों हैं, तो हमेशा खतरा बना हुआ है कि जरा बर्तन हिला तो गए काम से। हाँ, इसलिए अच्छा ये है कि पानी को निकाल लें दूसरी जगह और मेल को अलग कर दें तो फिर कोई खतरा नहीं है। तो पानी को निकाल दिया, मेल रह गया, उसका नाम है छायक भाव, कर्म के क्षय से होने वाले केवल ज्ञानादि छायक भाव, समझे ना। और वो पानी अभी नीचे, मेल नीचे बैठा है और पानी ऊपर निर्मल है, तो उनको बोलते औपशमिक भाव, माने कर्म का उपशम हो गया है, यानी उपशम माने नीचे बैठ के वो शांत हो गया है। तो औपशमिक भाव और छायक भाव और औदिक भाव, माने मोह राग द्वेष के भाव जो औदिक भाव, तो ये 3 भाव हो गए ना। अब ये तीनों आत्मा के हैं, ये कहना चाहते हैं वो पहले। तुम्हें मान लो कि हमारे हैं ही नहीं, हमने हैं ही नहीं, आता है एक नया जैन दर्शन में ऐसा भी आता है जिसमें ये कहा जाता है कि आत्मा में वो है ही नहीं, आत्मा था ही नहीं, ख्याल में है ना। उसकी चर्चा भी थोड़ी देर बाद करेंगे, चिंता नहीं। उसे पारिणामिक भाव बोलते हैं, जब उन पारिणामिक भाव तक पहुंचेंगे जब उसकी चर्चा अपन करेंगे। हैं 5 ही भावों में है वो, आप जानते हैं। तो औपशमिक भाव सिर्फ 2 ही होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। सबसे पहले औपशमिक सम्यक्त होता है, सहायक सम्यक्त नहीं होता है। अनादि काल से कोई भी मिथ्या दृष्टि है और सबसे पहले वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो उसके औपशमिक सम्यक दर्शन होगा, माने वो मेल पहले नीचे बैठता है, उन मेल को नीचे बैठा ले नहीं और पानी में से निकालना चाहे उनका ऐसा नहीं हो सकता, समझे ना। पहले उस मेल को नीचे बैठाना पड़ेगा, पानी ऊपर निर्मल रहेगा, ख्याल में आया ना, और फिर बाद में हम पानी को अलग कर दें। इसलिए सबसे पहले धर्म की शुरुआत औपशमिक भाव से होती है, इसलिए तत्वा सूत्र में भावों में सबसे पहले औपशमिक भाव का नंबर दिया, वो अधिक काल तक नहीं रहता। औपशमिक सम्मा दर्शन हो तो अंतर्मुहूर्त में खत्म, गारंटी से 48 मिनट के पहले पहले तो वो खत्म हो जाएगा, चाहे छायक हो जाएगा, चाहे क्षयोपशमिक हो जाएगा, और चाहे मिथ्यात्व में चला जाएगा, ज्यादा काल नहीं रहता वो। काल उसका बहुत कम है, ख्याल में है ना, लेकिन सबसे पहले होता वही है, ख्याल में ना, उसको बोलते औपसमिक भाव। जब अलग हो गया वो छायो समिक भाव, अब एक ऐसी अवस्था है कि ना अकेला उपशम है, ना अकेला क्षयोपशम है, कुछ तो उपशम है और कुछ क्षयोपशम है, उसे बोलते मिश्र माने छायोपसमिक भाव। ये परिभाषा बहुत कठिन है, आपको मैं सुना तो दूंगा, लेकिन मुझे पक्का भरोसा है कि एक को भी याद नहीं रहेगी पंडित गुलाब सिंह जी को छोड़कर। क्या इन सुनाऊंगा जरूर, क्या हम पढ़ाते थे ना तत्वासुद, जब तो सबसे ये कह देते थे कि परीक्षा में ये परिभाषा अवश्य आएगी, फिर भी 90% लोग नहीं लिख पाते थे। थोड़ा बोलता हूँ, घबराना, दो मिनट नहीं आए समझ में तो चिंता मत करना। ऐसा लगा सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, ख्याल ना, उन्हीं के आगामी निषेकों का सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती प्रकृतियों का उदय रहते जो भाव होता है उसका नाम है छायोपसमिक भाव। और इसे समझने के लिए कितनी चीजें समझना है कि सर्वघाती प्रकृतियां क्या है, क्यों, फिर उनका उदयाभावी क्षय क्या है, फिर उन्हीं के आगामी निषेक क्या है, फिर उनका सदवस्था रूप उपशम क्या है, फिर देशघाती प्रकृति क्या है, फिर उसका उदय क्या है, ऐसे 18 प्रकार के जो भाव होते हैं और एक एक के अलग अलग सर्वघाती प्रकृतियां होती हैं, अलग अलग देशघाती प्रकृतियां होती हैं, अलग अलग स्पर्धक होते हैं, निषेक होते हैं, तो अभी मैं पूरा करना नहीं होगा, आपको नहीं पढ़ाऊंगा, पर इतना आप समझ लो कि थोड़ी मिक्सर वाली दशा है। वास्तव में मिक्सर भी नहीं है, क्योंकि इसमें ना असली क्षय है ना असली उपशम है, ये नकली काम है, कहता ना अमेरिकन हीरा। अपन हिंदुस्तानी हीरा है ना, उससे अमेरिकन हीरा तो कितना और महान होता होगा। क्यों रमेश भाई, हम अमेरिका में थे लॉस एंजलिस में, तो हमको भाई लेके चलो साहब देखें बाजार में घूमने, तो भाई गए हम वहां, तो एक दुकान थी वहां पर, तो क्या उसमें अमेरिकन डायमंड्स के बहुत गहने थे। क्यों, हमारी पत्नी ने कहा अपन ले लेते हैं अमेरिकन डायमंड्स का कुछ, मैंने कहा तुम कल्पना लोक में तो नहीं उड़ रही हो, सपने में तो नहीं घूम रही हो, डायमंड और अमेरिका अपने बस्ती कहां से बात है, पंडितों का काम है जाए, बोलो बोले नहीं नहीं, सब लोग बोले नहीं नहीं चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो वहां गए हम सब देखे, बहुत तमाम, हम तो समझ रहे अमेरिकन डायमंड हिंदुस्तानी डायमंड से बढ़िया होता है होगा, कहने ना, जब हमने बताया तो गोर हमसे बोले आप कहाँ से आए, मैं हिंदुस्तान से, कहाँ से आए तो फलानी ने, तो आप यहाँ काय को खरीदते हैं, ये सब आप हिंदुस्तान में ले लेना, क्यों कि ये सब हिंदुस्तान से तो आता है, मद्रास में बनते हैं सब, एक तमिलनाडु से आता है, क्या कांच के टुकड़े हैं और कुछ नहीं है, नाम अमेरिकन डायमंड, समझे, ऐसा नाम छयोपशम, ना उसमें क्षय है ना उसमें उपशम है। माने ये औपशमिक भाव और छायिक भाव दोनों से हीन है, और इसमें धर्म की दशा भी होती है अधर्म भी होता है, जबकि उपशम भाव धर्म रूप ही होता है, छायिक भाव धर्म रूप ही होता है, केवल ज्ञान को बोलते हैं छायिक भाव, छायिक सम्मत असंग भी होता है, ख्याल में है ना, लेकिन छयोपशम भाव ज्ञानी के भी होते हैं और अज्ञानी के भी होते हैं, निगोदिया के भी होते हैं, ख्याल में है ना, और बारहवें गुण स्थान तक होते हैं, महामुनिराजों के भी होते हैं, ख्याल में है ना, आचार्य भगवंतों के भी होते हैं, सपक श्रेणी में चढ़ने वालों के भी होते हैं और निगोदिया के भी होते हैं। अभी एक एक औदिक भाव, तो औदिक भाव तो राग देश मोह के विकारी परिणाम, वैसे भी 21 प्रकार के होते हैं, मैं अभी 21 प्रकार के नाने बैठ जाऊंगा तो सब अखाड़ा छोड़ के भाग जाएंगे, है ना। सूक्ष्म भाव 18 प्रकार के, औदिक भाव 21 प्रकार के, सूक्ष्म भाव 2 प्रकार के, छायिक भाव 9 प्रकार के और पारिणामिक भाव 3 प्रकार के, ऐसे मिलाकर कुल 53 होते हैं। अब 5 में मुश्किल पड़ रही तो 53 में क्या होगा, है ना। 53 प्रकार के भाव होते हैं। तो वो कहते हैं कि मोटा मोटा समझ लेना, राग देश मोह जो विकारी भाव हैं जो हमारे औदिक भाव हैं। वैसे ये हमारा ये शरीर है ना, ये जो संयोग है ये भी नाम कर्म के उदय से हुआ है, इसको भी औदिक बोलते हैं। चार गतियां भी औदिक हैं, 5 इंद्रियां भी औदिक हैं, समझिए ना। अभी इनमें नहीं, आप तो इतना समझ लो मोह राग देश के जो भाव हैं वे औदिक भाव हैं, कर्म के उदय से हुए हैं। माने हमारे तो हैं, पैदा तो हम में ही हुए हैं, लेकिन इनका निमित्त कर्म का उदय है, इसलिए इन्हें बोलते हैं औदिक भाव। तो कर्म की तरफ से इनका नाम पड़ा ना। तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, बेटा मांगा के बाप का बेटा माँ का या बाप का दोनों ही का होता तो पूछने का सवाल ही क्या था, क्यों तो है। जैसे मान लीजिए कि पादनी की लड़की और कासलीवाल का लड़का, ध्यान से सुनना, उन दोनों की होगी शादी और उनका जो बेटा होगा वो पादनी होगा कि कासलीवाल, के दोनों का मित्र पादनी कासलीवाल होगा। समझ रहा आपके उत्तर ये क्या है, समझ गया ना। आप पंचोली हो, आपका बेटा पंचोली है कि आपकी पत्नी जहां से आई है उस गांव से वो है, बोलो क्या है। नहीं, मतलब बाप का नाम होता है इसलिए कहते बेटा बाप का। एक चंद्रकांत भाई नाराज हो जाएंगे तो अगली साल मुझे बुलाएंगे नहीं, इसलिए मैं ये भी कहता हूं कि ससुराल में बेटा बाप का और पीहर में बेटा मां का। क्यों, जब लोग पूछेंगे किसका बच्चा है, पीहर में होगी लड़की तो यही कहेंगे सुशीला का, कमला का, विमला का, कोई जमाई का नाम नहीं लेगा। क्यों, और ससुराल में होगी किसका बच्चा है, तो रमेश का, सुरेश का, ठीक है। लेकिन अपने यहां जो मान्यता है तो जिसके निमित्त से होता है उसका कहलाता है। तो पुरुष के निमित्त से महिला के उदर से बच्चा पैदा होता है, तो महिला हो गई उपादान और पुरुष हो गया निमित्त। तो गोत्र किसका, निमित्त का क्या उपादान का, होता है मां के बच्चा और कहा जाता है बाप का। कैसी विचित्र बात है, बोलो। आज तक किसी बाप ने बेटा को पैदा नहीं किया, सब बेचारी माताओं ने पैदा किया। क्यों है? ख्याल में है ना। तो ऐसे ही राग किसका है, कर्म का के आत्मा का। तो पैदा हुआ है आत्मा में, इसलिए राग की माँ है आत्मा, और कर्म के उदय से पैदा हुआ इसलिए बाप है कर्म, और तो कर्म के उदय से हुआ इसलिए इसका गोत्र का नाम क्या रखा, औदिक। नाम नाम क्या रखा इसका, औदिक भाव। कर्म के उदय से हुआ भाव, हुआ है आत्मा में, चल में ना। तो ये तो हो गया औदिक भाव। जब सबसे पहले सम्यक दर्शन होता है तो उसका नाम है औपशमिक भाव, क्योंकि कर्म के उपशम से हुआ, कर्म शांत हो गया, मिथ्यात्व नामक कर्म सत्ता में पड़ा है लेकिन अभी शांत हो गया। लेकिन वो कहता है जो शांत है ना, अभी युद्ध विराम हो गया है, युद्ध समाप्त नहीं हुआ, और युद्ध विराम अनंत काल तक नहीं चलता। यदि अंतर मुहूर्त में कुछ हिसाब किताब नहीं निपटा तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी, समझ गए ना। वो औपशमिक भाव, और झगड़ा खत्म ही हो जाए, कर्म का पूरा नाश ही हो जाए तो वो छायिक भाव, और कुछ कर्म का नाश हो कुछ कर्म रहे ऐसा मिक्सर मामला हो उसका नाम छायुक समय भाव। तो चार भाव हो गए, कौन कौन से, औपशमिक, छायक, औदयिक और छायुक समय। ये चार भाव पर्याय में है, आत्मा द्रव्य में नहीं है। अब एक है पारिणामिक भाव, वो अपने द्रव्य का है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अनादि काल से है और अनंत काल तक सभी के मौजूद है, ख्याल में है ना। उसके भी तीन भेद हैं, भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवत्व। तो जीवत्व नाम का जो पारिणामिक भाव है वो भव्यत्व और अभव्यत्व से भी महान है, इसलिए उसे परम पारिणामिक भाव कहते हैं। क्या नाम उसका? जैसे तीनों पारिणामिक भाव हैं, लेकिन इनसे जुदा बताने के लिए उसमें हमने परम और लगा दिया, परम पारिणामिक भाव। उसका नाम क्या है? जीवत्व। और हम तुम जीव कहलाते हैं तो उसी जीवत्व भाव के कारण कहलाते हैं। 47 शक्तियों में जीवत्व शक्ति सबसे पहली शक्ति है। अब ये कहते हैं कि 53 भावों में से 52 भावों को रखो एक तरफ और अकेला जीवत्व रखो एक तरफ, समझ गए। तो ये 52 भाव ये आत्मा नहीं है, ये वो आत्मा नहीं है कि जिस आत्मा का ध्यान करने से कर्म का नाश होता है, जिस आत्मा का ज्ञान करने से केवल ज्ञान होता है, और जिस आत्मा में अपनापन होने से सम्मा दर्शन होता है। वो आत्मा सिर्फ वो परम पारणक भाव रूप जो जीवत्व है वो है। तो 53 भावों में छिपा हुआ जो आत्मा है उसमें से वो एक जीवत्व नामक जो भाव है उसे हमें पहचानना है अलग से। और 52 भावों में से अपनापन तोड़कर और उस 53 में भाव में हमें अपनापन स्थापित करना है, उसका नाम है धर्म। आप कह सकते हो धर्म से इसका क्या संबंध है, क्यों इतने 5 भाव इतने कठिन और हमारी समझ में नहीं आए, याद नहीं रहे, ख्याल में है ना। तो इसका संबंध है, ख्याल में ना। वो ये कहते हैं कि ये जो 53 भाव हैं ये तुम्हारे नहीं है, तुम नहीं हो, हम झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन तुम तो अनादि अनंत हो ना। बोलो। हाँ, मैं तो आत्मा अनादि अनंत है ना, तो जो जो चीज अनादि अनंत हो वो मैं, और जो अनादि अनंत नहीं हो वो मैं नहीं। तो इतनी सा निर्णय कर लो, सोचो कि मैं कौन हूं, कि मैं पंडित हुकुमचंद हूं। तो मैं पंडित हुकुमचंद अनादि से हूं और अनंत काल तक रहूंगा, नहीं ना? क्यों? पहले नहीं था ना पंडित, और अभी हूं। और एक मिनट में दिमाग का एक स्क्रू ढीला हो जाए खत्म, तो बोलो कुछ हो सकता है ना। तो मैं पंडित नहीं हो सकता, एक ही शर्त है कि मैं तो वो हूं जो अनादि अनंत हो। तो मैं मनुष्य हूं, बोलो नहीं हो सकता अनादि। मैं बालक हूं, बालकपन तो चला जाएगा और मैं तो रहूंगा। यदि मैं बालक होता तो बालकपन जाने के साथ ही मैं खत्म हो गया होता है? तो मैं सेठ हूं, तो सेठ तो पैसे के संयोग का नाम है, तो पैसा तो चला जाएगा। करोड़पतियों को करोड़पति होते किसने नहीं देखा है, क्यों? तो यदि पैसा में होता तो पैसा के जाने पर मुझे खत्म हो जाना चाहिए था। तो एक परिभाषा लगाओ कि राग द्वेष मोह हैं, ये एक दिन चले जाएंगे और मैं तो रहूंगा, तो राग द्वेष मोह मैं नहीं हो सकते, बौद्धिक भाव में नहीं हो सकते। सम्मा दर्शन तो आज पैदा हुआ, कल तो नहीं हुआ था ना, इसलिए मैं सम्मा दर्शन नहीं हूं। कि केवल ज्ञान कि वो भी नया पैदा होता है, तो कहते वो भी मैं नहीं। तो कहते कौन? वो अनादि से अनंत काल तक है, मैं अनादि से जीव हूं और अनंत काल तक जीव रहूंगा, चाहे निगोद में रहूं चाहे मोक्ष में। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नाही भेद गिने संसार। जो निगोद में मैं जैसा था वैसा ही अभी हूं, और मोक्ष में भी वैसा ही रहूंगा। जिन लोगों को ऐसा दिखता है उन्होंने उस आत्मा को जाना है जिस आत्मा का आश्रय करने से धर्म होता है। क्या बोलो, आपको दिखता है ऐसा आत्मा? जो निगोद में सो ही मुझ में और सो ही मोक्ष मझार, कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्या आपका कैसी बात करते हो, निगोद में आलू में जनीकंद में था, एक इंद्री का ज्ञान था, न रसना इंद्री तक नहीं थी, कर्ण इंद्री नहीं थी, न बोल सकता था न सुन सकता था, और आज मैं इतना बढ़िया बोलता हूं क्यों? मैं वो ये कही उस मोक्ष में कहा अष्ट कर्मों से रहत अनंत सुखी और कहा हम हजार झंझटों वाले। सर ये कही है कि इन तीनों में जो एक है एक सा रहता है वो मैं तो वो हूं, और जो फर्क पड़ता है वो मैं नहीं हूं। तो ये भेद विज्ञान करना है। एक ही शर्त है क्या, कि वो अनादि अनंत होना चाहिए। यदि मुझे मेरी पहचान करनी है, यदि मुझे अपनी आत्मा को जानना है, तो उसकी पहचान की एक कसौटी ये है क्या, कि उसे ये होना चाहिए। सब मैंने कहा जैन कौन है इंसान, बोलो नक्की करें कौन जैन है, श्वेतांबर जैन है कि नहीं, दिगंबर जैन है कि नहीं, क्यों इसने लिखा ना दिगंबर श्वेतांबर मटी जैन बनो है? मैंने कल कहा था आपसे ना, मैंने कहा इसे ऐसा कर दो ना कि दिगंबर श्वेतांबर रह करके ही जैन बनो। अपनी अपनी मान्यता रखो ना अपने पास, अपना क्रियाकांड अपने पास रखो, क्यों? लेकिन तुम जो भगवान महावीर का मूल तत्व ज्ञान है त्रिकाली से भगवान आत्मा वो समझ लो, क्यों है? क्योंकि हम किसी को मटी मटी की बात करेंगे तो कोई मिटने को तैयार नहीं है। वो लोक दल बना था ना क्या, तो जनता दल ऐसा था, था ना, बल्कि एक का लिया दल और एक का लिया लोक। लोक दल और जनता पार्टी मिला के जनता दल, एक का लिया जनता और एक का लिया दल, ऐसे ऐसे कोई मिटना नहीं चाहता, समझ रहे हैं आपको? पहले लोक दल था चरण सिंह का और जनता पार्टी थी, फिर समझौता हुआ तो हम तो नहीं छोड़ेंगे अपना नाम, हम नहीं छोड़ेंगे, तो तुम्हारा ले लो जनता पार्टी का जनता और लोक दल का दल, और इससे बन गया जनता दल। तो पार्टी बन गई या नहीं बन गई? और कहते दोनों ही नाम खत्म करो, तीसरा नाम रखो, तो कोई तैयार नहीं होता। तो कहते वो त्रिकाली थे भगवान आत्मा, अरे तुम तो कहते दिगंबर श्वेतंबर, यहां तो कहते देह मैं शरीर कुछ भी मैं नहीं हूं, सेव संभाव भी मैं नहीं हूं, मेरा केवल ज्ञान भी मैं नहीं हूं। क्यों केवल ज्ञान मैं क्यों नहीं हूं? कमाना भी का नहीं है। और दूसरी बात एक ही है, दुनिया में अपना किसे कहते हैं बोला? तो एक परिभाषा है कि जो सुख दुख में साथ दे उसे हम अपना कहते हैं, और मानते नहीं मानते लोग में तो, और कहा कि कौन अपना है, हैं? अपने परिवार वाले हैं, इतने दूर हैं, कभी काम ही नहीं आते हैं तो अपने नहीं हैं, अपने पड़ोसी हैं, प्रेम से हैं, रोजाना काम आते हैं तो अपने हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? जो अपने सुख दुख में काम आवे वो अपने, एक सिद्धांत बना लिया अपन ने। तो देखिए केवल ज्ञान है वो अपना नहीं, क्यों? क्योंकि अपने दुख में काम नहीं आता। जब हम दुखी थे तब केवल ज्ञान भाई साहब कहां गए थे, अनंत सुखी हो गए तो पधार गए, ये तो सुख के साथी हुए ना, लड्डू खाने के लिए आ गए, जब कोई भारी बीमारी आई, घर में मौत हुई तो नदारत पता ही नहीं कहां गए। बोलो कि जो सुख के साथी हैं वो अपने के दुख के साथी, बोलो के साथ दुख के साथी वास्तव में अपने हैं, सुख के नहीं। तो केवल ज्ञान तो उनमें से है कि जो सुख का साथी है दुख का साथी नहीं है। तो राग देश मोहे कि वे भी अपने नहीं है, क्योंकि वे दुख के साथी हैं, सुख के साथी नहीं है। तो अपनी तो एक शर्त है, कौन सी? जो सुख में और दुख में दोनों जगह साथ दे वो मैं, तो सुख में माने मोक्ष में और दुख में माने संसार में। तो जो अनादि काल से लेकर अनंत काल तक संसार में भी जो था और मोक्ष में भी जो रहेगा, मैं तो वो हूँ। और वो है ज्ञानानंद स्वभाव, परम पारायणिक भाव, जीवत्व भाव। तो ये त्रेतन भावों में से वो जीवत्व नामक भाव निकालना है, जीवत्व नामक शक्ति निकालना है, परम पारायणिक भाव निकालना है, और हमें इन सब में से अपनापन तोड़कर उसमें अपनापन लाना है। उसमें अपनापन का नाम है सम्यक दर्शन। अभी गुलाबचंद जी आपको बता रहे थे कि सम्यक दर्शन थोड़ी आत्मा आता है। अरे भाई आत्मा, ये आत्मा जो त्रिकाली को बताया ना परम पारायणिक भाव, ये मैं हूं ऐसे मानने का नाम सम्यक दर्शन है। समर्थन को भी कहां आना है, क्या बोलते फिर क्या तुम सुनना। वो जो जीवत्व नामक भाव है, परम पारायणिक भाव, जो सारी जिंदगी गुरुदेव की बात बताते रहे, यानी गुरुदेव का कोई कहे एक शब्द में बताओ क्या उन्होंने हमें दिया, तो हम कह सकते हैं परम पारायणिक भाव। क्या ये उनने समझाया, ये सबसे बड़ी उनकी देन है, समझे ना। और दूसरी देन यदि कोई गिनाई जाएगी तो क्या है कि किरमद पर्याय, तो द्रव्य पर्याय दोनों आ गए, पर्याय सुनिश्चित है, एक किरम में होती है। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भाई, इतना ही कांजी स्वामी ने 45 वर्ष तक डरते रहे मुकुंद भाई, इतना बात समझ में आ जाए तो समझ लेना कांजी स्वामी की सब बात आ गई समझ में, और यदि नहीं आए तो समझ लेना बस सारी अभी दिल्ली बहुत दूर है। तो अपनी बात चल रही थी कि जो सुख दुख में दोनों में साथ रहे, निबोध में भी था और मोक्ष में भी जो रहेगा, ये निबोध और मोक्ष तो अवस्थाएं हैं, 52 भाव तो अवस्था है, ये तो आनी जानी है, ये तो मेहमान है। मेहमानों का नाम राशन कार्ड में नहीं लिखाया जा सकता। ये राशन कार्ड बनता ना अपना, यहाँ अपना अपना नाम जो अपने घर में रहते हैं उनका नाम लिखाते ना, फिर कभी कभी चीनी भी मिलती है, उससे अच्छी चीजें मिलती कि नहीं मिलती है, तो हम कह भाई क्या करें, हम बड़ी दिक्कत है कि हमारे मेहमान बहुत आते हैं, अब गेहूं इतना मिला, दाल इतना मिला, चावल इतना मिला, और मेहमान आएंगे तो हम बाकी का कहां से लाएंगे, कि तीन मेहमानों का नाम भी लिखा दो क्या होगा, तो उन्हें क्या खिलाएंगे, कि तुम भी तो उनके यहां मेहमानी में जाते होगे, उस दिन का बचेगा वो खिलाना। तुम्हारे यहां मेहमान ज्यादा आते होंगे तभी आएंगे ना, कि तुम किसी के यहां जाओगे, ऐसे थोड़ी है, समझ गया ना। तो मेहमानों के नाम राशन कार्ड में नहीं लिखे जाते हैं, जो आने जाने हैं उन्हें अपने में नहीं शामिल किया जाता है। 52 भाव, खासकर 50 भाव, तीन अभी छोड़ दो, दो जो पारणा में भाव है ना, भव्यत्व भव्यत्व, तो 50 भाव ये मेहमान है, वो हमारे घर के मेंबर नहीं है। ये तीन है घर के मेंबर है, वो तीन में दो भी नहीं, बस एक में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, बस उसका उसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन। तो भी वो दर्शन कहाँ होगा, आंखें फाड़ फाड़ के देखने की कोशिश करता है, क्यों उसके दर्शन के नाम है ना, सम्यक आत्मा का दर्शन करना है, ये भगवान की मूर्ति का दर्शन करता है ना, आत्मा का दर्शन करना है। नहीं नहीं वो तो आत्मा तो सूक्ष्म है, उसमें तो कोई रूप रंग है ही नहीं, ऐसे दर्शन नहीं होगा। तो कुछ लोग आंखें खोलकर दर्शन करने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग आंखें बंद करके दर्शन करने की कोशिश करते हैं, क्या करते कि नहीं करते, आंखें बंद करते हैं और फिर आत्मा का दर्शन करने की कोशिश करते हैं। ये कहते भैया ना, ये आंखें खोलकर दर्शन होंगे और ना आंखें बंद करके दर्शन होंगे, क्यों, क्योंकि खुली आंख दूसरों के देखने का साधन है ना। जब आंख खुली रखेंगे तो दूसरे दिखाई देंगे, ठीक है, और आंख बंद रखेंगे तो सोने का निशानी है, आलस की निशानी है। बंद आंख आलस की निशानी है और खुली आंख दूसरों को देखने की निशानी है। ना सोने से आत्मा प्राप्त होता है, ना दूसरों को देखने से आत्मा प्राप्त होता है। तो क्या कह रहे हैं फिर, से आंखों का क्या करें? बोलो, आत्मा का ध्यान करना है तो आंखों का क्या करें? अपन कहते हैं पांचों इंद्रियों पे से अपने मन को हटा लो। कैसे हटाएं? आंख पे तो हमारे पास गैप है ना, दरवाजे तो बंद कर लेते, खोल लेते। कान में है कोई दरवाजा? अब यहां से आवाज आएगी, हम सामायिक करने बैठेंगे ध्यान में, तो वो तो अंदर जाएगी ना। यदि बदबू आएगी तो वो तो जाएगी ना, क्योंकि सांस लेना तो हम बंद नहीं कर सकते। ठंडी गर्म हवा लगेगी तो शरीर को लगेगी ना। अकेली बेचारी आंखें हैं जिन्हें तुम खोल सकते हो और बंद कर सकते हो, बाकी चार इंद्रियां तो खुली ही हैं हमेशा। तो क्या करें फिर हम सामायिक करते वक्त? आंख बंद रखें या खुली? खुली रखोगे तो दूसरों को देखोगे और बंद रखोगे तो सो जाओगे। तो करें क्या कि तुम आंखों का कुछ मत करो ना, आंखें तो परद्रव्य है ना, ध्यान तो आत्मा का करना है ना। आंखें को छोड़ दो, जैसी हो वैसी रहने दो। तो कैसे रहने दो कि जब तुम आंखों को खुली छोड़ दोगे तो उनको शास्त्रीय भाषा में बोलते अर्धोन्मीलित, वो आंखें ऑटोमेटिक ऐसी हो जाएंगी, ना तो बंद होंगी पूरी और ना पूरी खुली होंगी, ना बाहर की तरफ देखती हुई होंगी और ना बिल्कुल बंद होंगी। यदि आपको देखना हो तो किसी दिगंबर मूर्ति के दर्शन करके जाके देखना, उनकी आंखें ऐसी होती हैं, कैसी, ना पूरी तरह बंद होती हैं और ना पूरी तरह खुली होती है, और नेचुरल। आप आंखों का कुछ मत करो। देखो अभी हम हाथ को ऐसा रखना है ऊपर, तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी ना, ऐसा हाथ रखने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। जरा भी हमारा ध्यान हटा और हाथ नीचे को गिरा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन हमें हाथ को ऐसा रखना है तो कोशिश करनी पड़ेगी। तो ध्यान करते वक्त हाथ कैसे रखना, चलो कैसे रखना रमेश भाई? ऐसे? अरे तुम हाथों को रखना ही नहीं ना, छोड़ दो, जैसे रहेंगे वैसे रह जाएंगे। तो जैसे कैसे रहेंगे? गारंटी से ऐसे ही रहेंगे। ख्याल में आया कि नहीं? वो नेचुरल मुद्रा है, हम उसके कुछ करें नहीं, और उसमें जैसी मुद्रा हो वैसी रहने दो। तो इसलिए कहते हैं कि सम्यक दर्शन क्या क्या नाम है, हमने भी बहुत बड़ी चीज समझ रखा है। एक मिनट में हो ऐसा है तो करा दो ना, कर लो ना, करा कौन दे दे? दूसरों के द्वारा कराया नहीं जाता सम्यक दर्शन, स्वयं किया जाता है। दर्शन माने कोई देखना फेंकना नहीं है। तो क्या है कि वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीवत्व भाव, वो अभी बताया मैंने परम प्राणामिक भाव, वो उसमें ये मैं हूं ऐसा अपनापन आ जाना, और उसका नाम सम्यक दर्शन है। क्यों? एक पादनी की लड़की की कासली बाल के लड़के से सगाई हो गई। क्यों? तो अब उसे कासली बाल बनाने के लिए कि मैं कासली बाल हूं क्या करना पड़ेगा? क्यों? उसे उस पति में एकत्व तो आ गया, ख्याल में है ना? पति में एकत्व तो आ गया तो मैं कासली बाल हूं अपने आप आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। तो ये तो अपने त्रिकाली ध्रुव में अपनापन आ गया, बस खत्म, इतना। इसने का नाम सम्यक दर्शन है, और ये जानना कि यही मैं हूं, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। कितना सरल काम है। और ये बात पहले देशना लब्धि पूर्वक शास्त्रों में से पढ़कर गुरु के मुख से सुनकर हमें समझना पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो हम जब आत्मा जब तक दिखेगा नहीं तब तक हमें आत्म सम्यक दर्शन नहीं होगा, धोखे में मत रहना, क्योंकि ये आत्मा इन चमड़े की आंखों से दिखने वाला नहीं है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा कि देखो ये रूमाल है ना, जैसा मेरे को ये रूमाल दिख रहा है ना मुकुंद भाई, अनुभूति के काल में सारे सम्यक दृष्टियों को इतना क्लियर आत्मा नहीं दिखता है। आपको देखना हो तो लाना रहस्यपूर्ण चिट्ठी मेरे पास, में दिखाऊंगा आपको। इतना ऐसा लिखा उसमें, साम्यवारिक प्रत्यक्ष में, इसे साम्यवारिक प्रत्यक्ष बोलते हैं, जो बाहि का पदार्थ जैसा दिखाई देता है उतना क्लियर भी आत्मा अनुभव में दिखाई नहीं देता। तो क्या करता है कि शास्त्र में पढ़कर गुरु के मुख से समझकर आत्मा का स्वरूप, उस स्वरूप में परिणामों को मनन करता है। परिणामों को मनन करना माने उपयोग की एकाग्रता नहीं, ये मैं हूं ऐसा जानना, ऐसा मानना, और ऐसा जानने मानने पूर्वक फिर उसमें उपयोग को स्थिर करना, उसका नाम सम्मदर्शन ज्ञान चारित्र है, उसका नाम ध्यान है, उसका नाम धर्म है। धर्म का आरंभ वहां से होता है। कितना सा धर्म है पर हमने कितना बड़ा बना दिया है, इतना व्रत, इतना उपवास, इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने मंदिर, सोने की चांदी की छत्तर और नमन क्या क्या, कितना कितना हम इतना अधिक धर्म करने लग गए हैं कि वो जो असली धर्म है वो गायब हो गया है क्या? समझ गया ना? धर्म कितना सा है ये समझना आप। ये बड़े बड़े पंडितों का काम है, सारा जिंदगी लगाने का काम है, कुछ नहीं है। कौओं को होता है सम्मा दर्शन, घोड़े को गधे को होता है सम्मा दर्शन, घबराना नहीं। चारों गतियों में होता है कि नहीं? गुलाब सिंह जी भगवान महावीर को शेर की पर्याय में हुआ था और भगवान पारसनाथ को हाथी की पर्याय में हुआ था। अरे वो हाथी और शेर भी अलग जाति के होंगे और हम तो, हमारी हालत तो क्या खराब है यार, आपको पता नहीं है कि ना खाने का ठिकाना ना पीने का ठिकाना है क्यों? अरे भगवान महावीर के जीव को शेर की पर्याय में जब सम्मा दर्शन हुआ था तब वो क्या कर रहा था मालूम है? हिरण को मार कर खा रहा था। मंदिरों में चित्र लगे ना अपने, मरा हुआ हिरण सामने पड़ा था, कुछ मांस का टुकड़ा हाथ में था, कुछ मुंह में था, कुछ पेट में चला गया था। हाथ खून से रंग रहे थे। आकाश से दो चांदधारी मुनिराज आए और उन्होंने समझाया। क्या समझाया? क्या समझाया हुआ गुलाब सिंह जी? कि सम्मेलन से जरूर जाना चाहिए पारसनाथ की टोंक पर, सिद्ध कौन सा सिद्ध वरकूट स्वर्णकूट पर, इतना ये करना चाहिए, इतना पूजा करना चाहिए। ये समझाया होगा कि वो परम्परामुख भाव जीवित तो क्या है, ये उनने समझाया। और वो उन्होंने उसी वक्त उसे सम्मा दर्शन की प्राप्ति हो गई। बोलो, मुझे कभी कभी इस बात में जरा गुस्सा आता है कि महाराज ने क्या किया, कम से कम ऐसा तो करना चाहिए था ना कि शेर से कहते जा पहले कुल्ला कर गया, मुंह साफ कर गया, बाद में बात करूंगा क्या? ऐसी हालत में समझाया? मेरे से बहुत लोग कहते हैं कि पंडित जी आप बंबई जाते हो, अमेरिका जाते हो, दुनिया में बड़े बड़े लोगों को आत्मा आत्मा सुनाते हो, है ना, तुम्हें पता नहीं है ये लोग कैसे है। आप नहीं जानते हो, हम जानते हैं, बाजार में तो हम बैठते हैं इनके साथ क्या, चौबीस घंटे तो हम रहते हैं। ये ब्लैक मार्केट किया पर न मालूम क्या क्या, दादा मैं नहीं बताऊंगा क्या दादा, इनको आत्मा सुनाते हो, बेकार तुम्हारा आत्मा चला जाता, कुछ मतलब नहीं है। तो मैं उनसे कहता हूं भैया के वो शेर महा उन मुनिराजों ने उस शेर को सुनाया था, इनकी हालत उस शेर से तो गई बीती नहीं है। बोला क्यों? और हमारे पास उपाय क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हम तो चाहते हैं बहुत अच्छे लोगों को सुनाएं, तो हमारे पास उपाय क्या है? हमें प्लेन में जाना हो तो वहां पर वो एक मशीन लगी रहती है क्यों, कि हम कोई हथियार मथियार लेके न जाए हैं, और उसमें से जांच करके ले जाते हैं अंदर। है ऐसी कोई मशीन जो हम नीचे लगवा देवे और हर आदमी उसमें से निकल के आए, यदि वो शराबी हो, कबाबी हो, ब्लैक मार्केट या हो, क्यों, तो वो मशीन में बच जाए और फिर उसे हम वही रोक दें? है कोई उपाय हमारे पास? क्या करें, हमारे पास क्या उपाय है? हम कहाँ एक एक की जांच करने जाएंगे? ये प्रैक्टिकल है क्यों? कैसा, आप नहीं जानते हो, हमें जानना भी नहीं है, आत्मा की बात सुनने आए हैं ना। उन मुनिराजों ने देखा कि ऐसे टकटकी लगाकर मेरी बात सुन रहा है, बस इतना पर्याप्त है कि हम ये प्रेम से हमारी बात सुनते हैं, इसलिए हम इन्हें सुनाते हैं। ख्याल में है ना, हम और कुछ हमें नहीं देखना है। और बोलिए क्या फल निकला, उस शेर ने संबंध से प्राप्त कर लिया। इसलिए आप लोग कोई ये सोचे कि बड़े बड़े पंडितों की बातें हैं, जिंदगी समर्पित कर देने वालों की बातें हैं। आजकल मुझे यही समझाने में पसीना छूट रहा है कि साहब हम तो बिल्कुल तैयार हैं सब छोड़ करके और बिल्कुल आकर के मैं आपके साथ हो जाएं। ये हमारे साथ होने से संबंध दर्शन नहीं होगा। तो तुम कहो तुम जयपुर में रहने लग जाए, सोनगढ़ में रहने लग जाए, देवदाली में रहने लग जाए, क्यों हो जाएगा? क्यों कहीं नहीं होगा? समय दर्शन तो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे आत्मा के दर्शन का नाम समय दर्शन है। तुम्हें समय दर्शन नहीं होना है, समय दर्शन को होना हो तो हो जाए। तुम्हें हमें क्या जरूरत है समय दर्शन की? हम तो वो हैं कि जिसके दर्शन का नाम समय दर्शन है। सुनने जरा दो चीजें, एक वो जो दर्शन करने से पैदा होगा और एक वो जिसका दर्शन करना है। दर्शन करना माने वो त्रिकाली ध्रुव आत्मा, और उसका दर्शन करेंगे तो पैदा होगा उसका नाम क्या? सम्यक दर्शन। अब उन दो में से तुम कौन हो? जो पैदा होगा वो तुम हो कि जो है वो तुम हो? बोलो। अभी कहा था जो अनादि अनंत है वो मैं हूं, जो अभी पैदा ही नहीं हुआ वो मैं हूं। क्यों? तो वो सम्यक दर्शन को होना होगा तो वो होगा, हमें क्या लेना देना? हम तो वो हैं कि जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। हम दर्शन करने वाले नहीं हैं, हम दर्शन देने वाले हैं। घबराना नहीं, मेरी बात को समझना। क्या क्या नहीं ना? हम आत्मा है ना, हम परम पारमार्थिक भाव है ना, हम ज्ञानानंद स्वभावी है ना, हम जीव है ना, हम स्वभाव से परमात्मा है ना। हम तो वो हैं कि जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। जिसको एक समय देखे तो सम्यक दर्शन होता है, अंतर मुहूर्त तक देखे तो केवल ज्ञान होता है। क्या है? अनंत सुख होता है। अकेला 48 मिनट के पहले तक इतना देखे, 48 मिनट तक देखे तो गारंटी से केवल ज्ञान होता है। वो केवल ज्ञान जो होगा वो मैं नहीं हूं। जिसको देखने से वो होता है, मैं तो वो हूं। मैं सोना नहीं हूं, मैं लोहा भी नहीं हूं, मैं पारस हूं। समझ में क्या फर्क है? लोहा वो है कि जो पारस का स्पर्श करे तो सोना हो जाए, ठीक है ना? लोहे को पारस पत्थर स्पर्श करता है तो वो सोना बन जाता है। तो जो लोहा है वो मैं नहीं हूं, और जो बनेगा सोना वो मैं नहीं हूं। मैं तो कौन हूं कि जिसके स्पर्श करने से लोहा सोना बनता है। समझ में आया कि नहीं? ना मैं लोहा हूं, ना मैं सोना हूं, ना मैं संसारी हूं, ना मैं सिद्ध हूं, ना मैं निगोदिया हूं, ना मैं मोक्ष वाला हूं। मैं तो वो हूं कि इन दोनों में जो विद्यमान है और जिनमें से निगोद से निकलकर मुख जिससे प्राप्त होता है, वो परम पारमार्थिक भाव रूप परमात्मा वो मैं हूं। ये जानना ये पांच भावों के जानने का सच्चा फल है। और जो जानेगा वो निश्चित रूप से पर्याय में परमात्मा बनेगा, अनंत सुखी होगा। अनंत सुखी हो गए इस मंगल भावना के साथ में।